ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से, देहरादून से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और तब से ही सेवा में भी जुड़ गए। आसाम, बिहार, गुजरात आदि स्थानों पर आपने सेवाएं करके सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। 1967 में आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद आपने ONGC ज्वाइन किया और लगभग 28 वर्षों तक कार्यरत रहे। और उसके बाद 1996 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उस समय आप जब रिटायरमेंट ले रहे थे, आपकी पोस्ट थी सुपरिंटेंडेंट जियोफिजिसिस्ट। उससे रिटायरमेंट लेके आपने ज्ञान सरोवर एकेडमी का कोऑर्डिनेटर पद संभाला। 1985 में आप यूथ विंग से जुड़े, सेक्रेटरी रहे उनके और करीब 12 पदयात्राओं का आयोजन किया। और 1988 में आपने साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग से आप जुड़ गए। उस समय आप नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, वर्तमान में आप इस विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने कई एग्जीबिशंस का निर्माण किया है, कई पुस्तकें लिखी हैं, नेशनल लेवल पर पर्यावरण श्री का अवार्ड भी आपने प्राप्त किया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। बहुत ही प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच में अपने अनुभवों से प्रकाश डालेंगे इस विषय पर, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर क्या होती है। सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। एक बार हम सब लोग उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा और सब ब्राह्मण वत्स मिल करके किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास ले करके उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ पावर कोई भी हो, वह शक्ति का एहसास कराती है। चाहे फिजिकल पावर हो, शरीर की शक्ति हो, चाहे मनी पावर हो, चाहे संबंधों की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, उससे मनुष्य काफी सिक्योरिटी का और एक रिलैक्सेशन अनुभव करता है। और जब बात आती है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर की, जैसा कि आज बताया अभी बहन जी ने, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंट्रोलिंग पावर का संबंध कोई चलायमानता से है, मूविंग थिंग्स से है। कंट्रोल जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके कंट्रोलिंग पावर कहाँ है, ब्रेक में। ब्रेक होता है तो चलती गाड़ी को भी रोक सकते हैं। और इसीलिए एक ये कंट्रोलिंग पावर बहुत आवश्यक है, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म। सूक्ष्म में कंट्रोलिंग पावर का मतलब मन की, विचारों की चलायमानता से है। और इसीलिए ये कंट्रोलिंग पावर का हमारे ज्ञान में, यज्ञ में बहुत महत्व है। और इसी के साथ साथ रूलिंग पावर का भी, क्योंकि हमारा सारा का सारा, आज की मुरली में भी बाबा ने ना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को महत्ता दी कि सबसे पहले ये कहाँ होनी चाहिए, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कहाँ होनी चाहिए, अपने ऊपर, स्व के ऊपर। दूसरे को कंट्रोल करने की बात पर तो हम लोग सदा कहते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, जूनियर होते हैं, कम प्रभावशाली होते हैं, उन पर कंट्रोल करना, रूल करना। लेकिन अपने ऊपर, मन जीते जगत जीत, भारतीय संस्कृति ने ही ये सिद्धांत दिया है, मन जीते जगत जीत। दूसरी पाश्चात्य संस्कृतियां तो बहुत चीजों पर बोलती हैं, दूसरे पर कंट्रोल करना, और उसी को ही वो बड़ा मानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, ज्यादा शक्तिशाली है, वो ही उसे जीने का अधिकार है, सर्वाइव करने का अधिकार है। और जो कम शक्तिशाली है उसे जीने का जैसे उतना अधिकार नहीं, ऐसा पाश्चात्य संस्कृति मानते हैं। और ये तो जंगल रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ा जानवर होता है वो अपने से छोटे जानवर को मार के खा लेता है, छोटा और अपने से छोटे को, तो जो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है उसे ही जीने का ज़्यादा अधिकार है, वही जंगल का राजा कह देते हैं, शेर है या कोई सर्वाइवल। लेकिन उसकी तुलना में भारतीय संस्कृति ने कौन सा सिद्धांत दिया है, जियो और जीने दो। उसकी तुलना में भारतीय संस्कृति, बाबा भी यही कहता है, जियो और जीने दो। सबको संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे जीने का अधिकार है, इसीलिए जियो और जीने दो में सब चीज आ जाती है। ये बात कि हम भी जिए, दूसरे को, छोटे को गाइड करना, बताना, वो हमारा फर्ज है परिवार में। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने सबसे पहला सिद्धांत जो बड़ा दिया है वो दिया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारी परिवार है, कुटुंब है, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार। केवल वो परिवार नहीं जो लौकिक रीति से माता पिता बच्चे भाई बहन होते हैं, वो तो है लौकिक परिवार, लेकिन एक वृहद सेंस में, बड़े सेंस में वसुधा ही हमारा परिवार है। किस रीति से बोला है, उसे दुनिया नहीं समझ सकी और उसे मनुष्यों को ही समझ लिया, वसुधा हमारा परिवार कहने तक, बस हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, सब मनुष्यों तक ही सीमित रखा। लेकिन जो हमारे बड़े मनीषी थे, विद्वान थे, उनका तात्पर्य क्या था? वसुधा ही हमारा परिवार। वसुधा में केवल मनुष्य ही नहीं आते, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे प्रकृति के पांच तत्व, ये सब वसुधा के अंदर आते हैं। पृथ्वी तो ये सारा अपना परिवार है, ये मानेंगे, मान के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर की अनुभूति सहज होती जाएगी। जब हम अपने को बड़ा मानते हैं, मैं मास्टर हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है इसे मेरी बात माननी चाहिए, मैं धनवान हूँ, ये उतना धनवान नहीं, इसे इस पर अधिकार चलाना मेरा राइट है, हुक्म है, आदि आदि, तो सब प्रकार की समस्याएं होती हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुम्बकम का नारा जो दिया भारतीय संस्कृति ने, वो यही दिया, वसुधा। तो परिवार में बड़े छोटे सदस्य होते हैं, तो सबसे छोटे सदस्य हमारे परिवार के कौन से हैं? वसुधा को अगर हम पृथ्वी माने, पूरा ये वसुधा पृथ्वी जो है ये परिवार है, और इसका सबसे छोटे सदस्य हैं पेड़ पौधे। क्यों? जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, माँ ही उसका संसार है, ऐसे ही ये पेड़ पौधे भी धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, और सबसे छोटे सदस्य पर तो सबका बहुत प्यार रहता है, स्नेह रहता है। तो इनको एक तो हम इस रीति से समझें, इनसे हमारा, ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। फिर बच्चा है, थोड़ा सा जरा बड़ा होता है, बस लेटा दो तो थोड़ा पेट के बल भी घिसकना शुरू करता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ महीनों का होता है, तो वो जो और ऐसे सांप है, केंचुए है, ऐसे अनेक जंतु हैं जो पेट के बल रेंग करके चलते हैं, तो वो हमारे परिवार के सेकंड यंगेस्ट मेंबर, सबसे छोटे पेड़ पौधे, उससे बड़े ये पशु। फिर और बच्चा बड़ा होता है तो दो हाथ दो पैर से घुटने के बल चलना शुरू करता है, तो ऐसे चौपाए जो हैं वो हमारे परिवार के और बड़े सदस्य, तीसरे बड़े सदस्य। और सबसे बड़े सदस्य हम मनुष्य हैं, दो पांव पे चलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं। तो एक तो ये परिवार है हमारा, केवल मनुष्य नहीं, ये पशु जीव जंतु ये सब भी हमारे परिवार के सदस्य है। ये केवल बुद्धि तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल में सबसे ऐसा स्नेह होना चाहिए। मुझे याद आता है, हिस्ट्री हॉल है, आपने देखा है, और वहाँ पर मुझे बाबा के साथ क्लास करने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। 62 में ज्ञान में आए और 69 तक जब तक बाबा अव्यक्त हुए, अनेक बार वहाँ पर क्लास की होगी बाबा की, तो बाबा को भी देखते थे, है साकार ब्रह्मा बाबा को बाबा से मिलते थे। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, पहली बार भी आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस बाबा हाथ फैला देते थे और सब बाहों में जैसे बाबा के आ जाते थे और अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना अभ्यास किया हुआ था। आप सब लोगों को मालूम ही है, लिख लिख के मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो बाबा के पुत्र पुत्रियाँ पत्नी जो भी थे, अभ्यास कर करके बाबा ने पक्का किया था ये आत्मा है। तो बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, देखते थे, वो भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। तो इसीलिए एक तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारे अंदर भावना रहे, जैसे बाबा में थी। गुरुवार को हम देखते थे, वहां पर पहले तीन संदलियां पड़ी रहती थी, इधर से बाबा आते थे, इस संदली पर बाबा बैठ के मुरली वगैरह चलाते थे, बीच की संदली खाली रहती थी, इधर मामा बैठते थे और मामा पहले मुरली चलाते थे, और इस प्रकार से क्लासेस चलते थे। गुरुवार के दिन मुरली के बाद जैसे भोग लगता था, संदेशी आती थी, बैठती थी और भोग लगाती थी, भोग लगा के संदेश लाती थी, फिर क्या होता था, बाबा ब्रह्मा बाबा भोग की थाली लेकर के और उसके अंदर जो डिब्बी होती थी वो डिब्बी खोली और थोड़ा सा उसमें जो भी भोग बनाया हुआ होता है, हलवा या बूंदी या जो कुछ, थोड़ा हाथ पे लेकर के बाबा कहते थे, बच्ची आओ, बच्ची आओ, बच्ची। तो हम सब देखते थे बाबा किसको बच्ची को बुला रहे हैं हाथ में ये लेके। बस बाबा थोड़ा बुलाते थे और पीछे से एक बहुत छोटी सी चिड़िया बुलबुल जैसे वो फुदकती फुदकती धीरे धीरे कू 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 करती करती, जैसे बाबा की भाषा समझ रही हो, आती थी, आते आते पास तक आई, फिर मेज पर आई, मेज से फिर और थाली पर आई, फिर थाली से उछल के बाबा के हाथ पर आती थी और हाथ पे आके जो बाबा भोग रखा था बाबा उसको पहले जैसे खिलाते थे। जैसे ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रैक्टिकल में देखने को मिलती थी, और ये खाके और फिर बस थोड़ा ऐसे चू चू करके और वो फिर धीरे धीरे चली जाती थी, उड़ जाती थी, वापस चली जाती थी। चलो ये तो चिड़िया की बात है, बहुत हार्मलेस प्राणी है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन एक बार देखा कि बस बाबा किचन का चक्कर लगा के आ रहे थे, और किचन का चक्कर लगा के बाबा ने देखा जहाँ भी डिस्पेंसरी है इसके पास ही तीन चार भाई लोग खड़े थे, और एक भाई के हाथ में डंडा था और उसने एक सांप का फी बड़ा फुफकार रहा था उसके फन के ऊपर, वो जैसे बांस ये डंडा रखा हुआ था। उधर से बाबा आ रहे थे तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे कैसे भीड़ लगा रखी है। तो बाबा अभी आप नहीं आओ इधर, यहाँ सांप है, बहुत फुफकार रहा है और आप इधर नहीं आओ। अरे बच्चे, बच्चे को मारना नहीं, बाबा का हर एक के लिए, कोई भी प्राणी हो, बच्चा या बच्ची, बच्चे को मारना नहीं, मारो नहीं, तकलीफ नहीं दो। बस बाबा धीरे आए उधर, उसके सामने खड़े हो गए, बड़ा तेजी से हिल रहा था, फुफकार रहा था, पूरा बॉडी हिल रही थी उसकी। और बाबा ने कहा, बच्चे, एक बच्चे को बोला कि जाओ हांडी ले आओ और मटका जैसा और कपड़ा लेके आओ। और बाबा उसके सामने खड़े होके थोड़ा उसे दृष्टि दी, जैसे वो जैसे शांत धीरे धीरे जो बड़ा तेजी से हिल रहा था, फुफकार रहा था, शांत हो गया। फिर बाबा ने कहा एक बच्चे को कि बच्चे इसको पूंछ से पकड़ो और मटके में डालो, ऊपर कपड़ा बांध के जंगल में छोड़ाओ, मारो नहीं। तो इस तरह बाबा की कोई भी हो, भाई बहन हो, कोई गाय भैंस, हमारे पास गाय भी होती थी उस समय कुछ गाय भैंस, तो उनके प्रति भी बाबा की कितनी रहम दृष्टि। वसुधा का कोई भी जीवंत प्राणी है, हर एक के प्रति बाबा की। तो ये वसुधैव कुटुम्बकम की भावना अगर रहेगी तो अपना परिवार का जैसे कोई छोटा सदस्य होता है, कोई मारते हैं या गिर जाता है, रोता है, तकलीफ होती है, तो सब एकदम दौड़ते हैं भाई उसे उठाने के लिए, सब रक्षा करते हैं। तो ऐसी परिवार के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी हैं, सब को हम उस नजर से देखें, ये सब हमारा परिवार है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनके प्रति रहम की दृष्टि भी होगी, दया की भावना होगी उनके प्रति, और जो आज का विषय है ना, वो शक्तियां भी विशेष होंगी, एक कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। क्यों? क्योंकि जब अपने ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर जितनी कंट्रोलिंग पावर होगी, रूलिंग पावर होगी, तो उतना ही फिर हम दूसरों को भी उसी नजर से देखेंगे। तो बाबा ने जैसे बताया ना कंट्रोलिंग पावर, तो ये गाड़ी का जैसे ब्रेक है, कभी कभी वो तो स्थूल में गाड़ी चलाते हैं रोकने के लिए, कम स्पीड करने के लिए, कई बार मन के संकल्पों की गति भी बहुत तेज हो जाती है, कोई घटना ऐसी हो, कोई बात ऐसी हो जाती है, बहुत संकल्प तेजी से चलते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी कौन सी कंट्रोलिंग पावर चाहिए? कौन सा बाबा ने विधि बताई? हाँ, कई बार बाबा ने बताई है, हाँ, तीन बिंदु की भी बात है, बिंदु, फुल स्टॉप। तो स्टॉप करने की जहां बात आती है, संकल्पों की गति बहुत तेज हो अगर ऐसे, तो उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा है ये, लेकिन मुख्य बात यह है, बाबा ने भी महसूस किया, जब 1936-37 में बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, बहुत सृष्टि परिवर्तन का साक्षात्कार हुआ, पृथ्वी का एटॉमिक वीपन, ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा पृथ्वी का परिवर्तन, सब आपने पढ़ाई है, साक्षात्कार हुआ, और वो तो बस ये सब एक तरफ हुए, लेकिन बाबा भी महसूस करते थे कि ये मन जो है बार बार भाग जाता है, योग लगाने बैठते हैं बार बार मन भाग जाता है। क्या किया फिर बाबा ने? मन बहुत चंचल है, कभी कहीं भाग रहा है धंधे की तरफ, कभी परिवार की तरफ भाग रहा है, तो पहला तो वो अभ्यास किया ही बाबा ने, परिवार के एक एक व्यक्ति का नाम भी लिख करके, और फिर उसके बाद बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? कि हे मन, अब मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, मेरा कर्मचारी है, मुझ आत्मा राजा की बात तुझे माननी चाहिए, लेकिन तू ज्यादा बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। लेकिन हे मन, दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा, हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि तुझे मेरी आज्ञा पर चलना पड़ेगा, मेरे कहने पर, क्योंकि मैं राजा हूं और तू कर्मचारी है, तुझे मेरी बात माननी है। तो ऐसे करके बाबा ने मन को ऑर्डर दिया, और जो कहते हैं ना स्वमान, अपने स्वमान की सीट पर बैठ के, मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा कर्मचारी है, मन को बाबा ने अपने विचार शक्ति से कंट्रोल किया। और ऐसा ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो इस तरह संकल्प शक्ति, संकल्प भागते हैं, कमजोर होते हैं, तो संकल्प को संकल्प से ही कट करना है, उसे शक्तिशाली, जैसे कांटा चुभ जाए ना तो कांटे को सुई से ही निकालेंगे, ऐसे उसी से ही वो निकलेगा। ऐसे ही संकल्प अगर बहुत भागते हैं तो ये विचार शक्ति को संकल्प के माध्यम से ही हमें वो करना पड़ेगा। बड़ा सहज है, बाबा ने देखा, इसीलिए बाबा ने हमेशा कहते हैं कि सदा स्वमान में स्थित हो, स्वमान की सीट पर बैठ के संकल्प को ऑर्डर करो। हमारा मानो कोई विचार है, किसी से कहा सुनी हो गई, बहुत बात चल रही है आपस में, हम ऑर्डर भी कर रहे हैं, जानते भी हैं बाबा ने कहा सहन शक्ति होनी चाहिए, एक ने बोला दूसरा चुप हो जाए, बात धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चाहते हैं लेकिन वो सहन शक्ति नहीं आ पाती। बुलाते हैं सहन शक्ति आओ आओ, लेकिन नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सीट पर बैठकर ऑर्डर नहीं करते। कोई भी ऑफिसर होगा, मिनिस्टर होगा, जब तक सीट पर है तब तक वो सीट पर बैठ के ऑर्डर करेगा तो सब उसकी बात मानेंगे, और अगर वो ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया या चला गया वहां से, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि सीट पर है ही नहीं वो। तो ऐसे ही बाबा ने भी स्वमान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर करना सीखा, फिर मन तुरंत ही वश में आ गया, फिर कभी भी बाबा को वो समस्या नहीं हुई। तो वही बात बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर, अगर मन हमारा इधर उधर है तो सबसे पहले हम अपने स्वमानों की लिस्ट, इसीलिए बाबा कहता है स्वमानों की लिस्ट बनाओ, स्वमान लिखो, उन्हें रिवाइज करो, एक के बाद एक पढ़ो, और उसको रिवाइज करते करते फिर जैसी शक्ति आएगी और स्वमान को, अपने स्वमान में स्थित हो करके किसी भी गुण को, शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो हमारी बात मानेगा और हम उस पे आ जाएंगे। तो स्वमान में स्थित हो करके संकल्प को ऑर्डर करना है, और ये क्योंकि संकल्प का काम ही है, जैसे छोटा बच्चा होता है, चंचल होता है, इधर उधर जाएगा ही जाएगा, भागेगा, ये उठाएगा वो, स्वभाव है, संस्कार है। ऐसे ही मन का काम भी है संकल्प करना, स्वभाव बचपन से ही चंचलता, हमने ही उसमें ये संस्कार मन के अंदर डाले हैं, बच्चे के अंदर। छोटा बच्चा होता है ना, जब चलना सीखता है ना, थोड़ा खड़ा हुआ और बस चलेगा तेजी, एकदम चलेगा, गिर जाएगा, फिर खड़ा होगा, माँ बाप भी प्रोत्साहित करते हैं, हाँ हाँ चलो थोड़ा, जब कई बार क्या होता है तेजी से चलता है वो गिर जाता है और थोड़ा उसे जरा चोट लग जाती है, दरवाजे से टकरा गया, दीवार से थोड़ा टकरा गया, जमीन पे गिर गया, चोट लग गई, तो रोने लगता है, तो माँ क्या करती है, आप सब बहने बैठे हो ना, कई बार ये देखते हैं माँ उसको, जैसे बच्चे को चुप करने के लिए धरती को एकदम ऐसे, जैसे ये धरती का दोष है और बच्चे तेरा कोई दोष नहीं, बच्चा भी बड़े गौर से देखता है और बचपन से ही उसके माइंड में ये बीज हमने बो दिया कि तू कभी गलत नहीं है, हमेशा दूसरा ही गलत है, बस बचपन से ही ये संस्कार, और जिंदगी भर वो यही समझता रहता है भाई उसने मुझे क्रोध दिला दिया, उसने ये बात कही तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये कहा तो मैंने उसे मार दिया, मतलब दूसरा दोषी है, मैं दोषी नहीं हूं। जिंदगी भर सुना है ना, एक ही भूल करते रहे, कौन सी भूल, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, धूल चेहरे पर गलती हमारी है लेकिन आईने को साफ करते रहे कि आईने में शायद धूल है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो एक तो ये हमें देखना है कि अगर कहीं पर कंट्रोलिंग पावर है तो वो कंट्रोलिंग पावर मेरे कारण अपने कारण है या दूसरे के, और 90% देखेंगे हमारे अपने ही कारण होती है। हमारे अंदर ही सहन शक्ति नहीं होती है, हम ही दूसरे को गलत समझते हैं, छोटा समझते हैं, हम ही समझते हैं वो हमारे कंट्रोल में चले। तो इस कारण से ही हम अपने को करेक्ट ना करके दूसरे को करेक्ट करते हैं। तो होना ये चाहिए पहले अपने अंदर झांक करके हम देखें। एक बात, कंट्रोलिंग पावर के लिए दूसरी जगह ना जाए, अंदर हम अपने अंदर देखें। हम बाहरी दूसरों को देखते हैं तो ये होता है, हाँ सुना एक व्यक्ति बड़ा अशांत सा था अपने, उसने कहा चलो जरा गुरुजी के पास चलते हैं, और गुरुजी के पास जाके वो बैठ गया। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, और भी चेले बैठे हुए थे, वो भी सुनने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा, शांति। इतनी देर में भूचाल आया, पृथ्वी हिली, अर्थक्वेक, बड़ी तेजी से वो छपरा भी हिलने लगा। गुरुजी जिसके नीचे बैठ के सबको सत्संग करा रहे थे, तो सब जब जमीन बड़ी तेजी से हिलने लगी तो सब लोग भागे, भागो भागो, भूचाल आया, भूचाल आया, खुले में जाओ, सब दूर दूर जाने लगे, और सारे चेले भाग गए। गुरुजी बैठे रहे, सब कहने लगे गुरुजी आप भी आओ, ये छपरा कभी भी गिर सकता है, लेकिन गुरुजी शांत भाव से बैठे रहे। बहुत सबने बुलाया, गुरुजी वहीं रहे, और थोड़ी देर के बाद जब भूचाल शांत हुआ तो सब लोग वापस आए। सबने कहा अरे गुरुजी इतना तेजी से भूचाल आया, जमीन हिल रही थी, ये कभी भी गिर सकता था, ये जो आपके ऊपर छपरा है आपको चोट लग जाती, हम सबने कितना बुलाया आप नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा शांत रहे पहले, जब सबने कहा अरे गुरुजी आपको भाग के आना चाहिए था, तो गुरुजी ने क्या कहा, अरे देखा नहीं तुमने, तुम भी भागे थे, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी, आप तो वहीं की वहीं बैठे थे। कि नहीं, बस अंतर ये था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अपने अंदर। आवश्यकता इस चीज की है कि जब बहुत संकल्प पावर हो, बहुत तेजी से संकल्प चल रहे हो, तो बाहर उसका हल ढूंढने की बजाय हम अपने अंदर भागे, क्योंकि बाहर अति हलचल है, भूचाल है, धरती की बात नहीं, बाढ़ है, तूफान है, युद्ध है, झगड़े चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बाहर अति हलचल, ये हमारा अंतिम पेपर है। बाहर अति हलचल, और इसमें पास होने का साधन है अपने अंदर जाओ जहां अति अचल स्थिति है। तो बाहर अति हलचल होगी संसार में, लेकिन हम अति अचल वाली स्थिति की तरफ भागेंगे। और क्योंकि सभी समस्याएं कोई भी हो, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं दुनिया में, कहा है समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। धन की समस्या हो, शरीर की समस्या हो, संबंधों की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आधि, व्याधि, उपाधि, उसका उपाय है समाधि। समाधि माने कोई जंगल में चले जाना नहीं, समुद्र के किनारे जाना, एकांत, सबसे ज्यादा एकांत हमारे अपने अंदर ही है। तो कोई भी अंत में बहुत समस्याएं आने वाली है, अति हलचल होगी, तो इसीलिए जो ये संकल्प पावर है जो बाबा ने आज बताया ना, तो इसमें कंट्रोलिंग पावर के लिए सबसे अच्छा स्थान यही है जो अति अचल है। वहां पर हम चले जाएं, अपने को अंदर ले जाएं, और बाबा ने उसका स्थान बताया ही है कैसे अपने अंदर जाना है। सब बाहर की देह बहन की विस्मृति करते हुए, मैं आत्मा हूँ, अति शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, आत्मिक स्मृति में जितना धीरे धीरे जाएंगे, अति अचल स्थिति में आते जाएंगे, और जब अति अचल स्थिति में आएंगे तो बाहर की हलचल भी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। जितनी भी हलचल, हलचल तो होनी है, बहुत होगी, लेकिन हम अति अचल स्थान पर आ गए तो बस अंदर, तो कोई तकलीफ नहीं। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए एक तो ये देखना है, अंदर अंदर जाने का अभ्यास हो, और साथ में ये समझ लेना चाहिए। हाँ, एक भिक्षा, एक भिक्षुक आया भिक्षा पात्र लेके गुरुजी के पास, मतलब राजा के पास। राजा को बोला, राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ राजकोष में से कुछ मोहरे वगैरह धन दौलत ला के इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। मंत्री गया, भर के लाया, डाल दिया, पात्र भरा नहीं। दोबारा गया, तीसरी बार गया, अनेक बार गया, देखने में पात्र छोटा था लेकिन वो भरता नहीं था। जितना भी डालते जाओ पता नहीं कहाँ समाता जाता था। तो राजा ने सोचा जरूर इसमें कोई गुह्य रहस्य है। तो राजा ने पूछा उससे, भिक्षुक से, कि इसमें कोई राज लगता है, इतना देखने में ये इतना छोटा सा है लेकिन कितनी बार मंत्री भर के लाया, मुट्ठियां डाला, ये भरा नहीं, क्या राज है इसमें? तो उसने कहा कि महाराज, ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मन होता है और मन सदा अतृप्ति रहता है। एक इच्छा पूरी करो, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो इच्छा पूरी करो, चार और इच्छाएं बलवती हो जाएंगी। इस प्रकार से मन जो है अनेका अनेक इच्छाओं की उत्पत्ति का स्थान है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग पावर दो रीति से हो सकती है। एक तो संकल्प पैदा हो जाए, उसको हम शांत करें, और दूसरा संकल्प को पैदा ही ना होने दें, उसकी उत्पत्ति ही ना होने दें, ऐसे अचल स्थान पर बस। तो उससे क्या होगा, कंट्रोलिंग पावर मन के अंदर रहेगी, और जितनी जितनी कंट्रोलिंग पावर रहेगी उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक तो मन की कंट्रोलिंग पावर के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने को संकल्पों का जो है उस पर ध्यान दें। तो कई बार चाहते हुए भी ना, संकल्प तो होते हैं, हमारा संसार यही है, यही इस संसार, बस ब्राह्मण संसार हो गया। अब बाहर की दुनिया से तो हम लोग लगभग कट ऑफ ही होते जाते हैं, जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, बाहर के संबंधों से खाना पीना उठना बैठना उनके साथ कम होता जाता है, और हमारा ब्राह्मण परिवार ही। लेकिन यहीं पर ही हमें फिर माया आ जाती है, कमजोर संकल्पों की व्यक्ति। बस हमें लगता है, मुझे याद आता है दादी जी की बात, दादी प्रकाशमणि जी थे, वो कहते थे, देखो कई बार भाई बहनों में आपस में थोड़ी संबंधों में कटुता हो जाती है, उतना मिठासपन नहीं रहता, उसके दो कारण विशेष, दो कारण बताते थे। एक कारण है कि कहीं पर भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, बस किसी ने किसी को कहा, एक भाई ने कहा, ओ अरे भाई फलाना भाई या बहन आपके लिए ये बात कर रहा था, आपको ऐसी बात, तो वो उसने करी हो या ना करी हो, लेकिन वो बात हमारे मन में बैठ जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा हो जाती है कि वो बहन या वो भाई हमारे बारे में तो ऐसा सोच रहा है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, जब अगर इसको कंट्रोल नहीं करते, दूसरी बात क्या होती है, धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है। हम कहते हैं ये पहले बोले, वो समझते हैं ये पहले बोले, और इस तरह संबंधों में कटुता आती जाती है। इसी ब्राह्मण परिवार के साथ दूसरे नाम रूप में हमें सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक चलना है, और इससे यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन या संबंधों में कटुता पैदा कर लेंगे तो सतयुग में तो कटुता होगी नहीं, तो सतयुग में तो लेकिन होगा यही परिवार, ब्राह्मण परिवार। तो हर हालत में हमें ये देखना है कि कभी भी कटुता पैदा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलत फहमी हो, तो हम ये ऐसा करें। तो क्या करें, आपस में बैठ के उसको बोलचाल से दूर करने, और कभी भी ब्रेकडाउन ना, संबंधों में बोलचाल बंद ना करें। बस कई बार होता है आपस में मिलते हैं, सामने आ भी रहे हैं, वो इधर से निकल जाएंगे, वो इधर से निकल जाएंगे, ओम शांति नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, तो संबंधों में और कटुता बढ़ती जाती है। न भी इच्छा हो तो भी करो, हेलो बहन जी, हेलो भाई साहब, ओम शांति, कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, चार बार, और वो कटुता खत्म होती जाएगी। तो इसीलिए कंट्रोलिंग पावर केवल मन तक ही नहीं, मन के बाद वो हमारे व्यवहार में भी आनी चाहिए। व्यवहार में आएगी, बोलचाल में आएगी, उसके बाद वो मन तक भी कटुता एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए संकल्पों को जो कंट्रोलिंग पावर के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसी कटुता कहीं पैदा भी हो तो उसे साथ में न चलने दें। फिर और जितना आगे चलते जाते हैं ना, तो विकारों पर तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, रोज मुरली सुनते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, बाबा चार बजे का समय है वरदान देने का, बाबा वरदान देते हैं, उस शक्ति के आधार पर हम शक्तिशाली होते चले जाते हैं, तो ये तो होता चला जाता है। लेकिन विकारों पर, विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त करते जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प जो है ना, वो चलते रहते हैं, नए नए पैदा होते रहते हैं, व्यर्थ विकारी नहीं। विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त कर ली। एक बार हम लोगों की कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले भट्टी थी, तो गुलजार दादी तो तब तबीयत ठीक थी, संदेश लाते थे, तो बाबा ने संदेश दिया कि ये जो सीनियर भाई बहनों का, भाइयों का ग्रुप बैठा है, इसको बाबा एक सर्टिफिकेट तो देता है कि इनके अंदर विकारी संकल्प नहीं है। विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त कर ली, क्यों? क्योंकि कोई 40 साल के थे, कोई 30 साल के, 35 साल के थे, इतने साल तक अभ्यास करते, विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त कर ले। लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प न चले, ये बहुत अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि व्यर्थ चलते रहेंगे और उन्हें कंट्रोल नहीं किया ना, तो संपूर्ण कैसे बनेंगे। मुझे ममा की एक बात याद आती है, ऐसे समय में ये ममा का महीना भी चल रहा है, जून मास, कौन सी तारीख को ममा ने शरीर छोड़ा था, 24 जून, याद है। तो ममा ने जब शरीर छोड़ा, ममा शरीर छोड़ के ऊपर गए और सूक्ष्म वतन में पहुंचे, तो ममा से पूछा सूक्ष्म वतन वासी बाप दादा ने, साकार ब्रह्मा बाबा तो यही थे, 1965 की बात है, 1965 में ममा ने शरीर छोड़ा 24 जून को। तो ममा से पूछा बाबा ने कि ममा, आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो ममा पहले तो थोड़ा शांत रही, फिर ममा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव नहीं किया। अच्छा, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया, तो जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है। ममा का शरीर हिस्ट्री हॉल में शरीर छोड़ा, मामा ने फिर हिस्ट्री हॉल में लाके शरीर रखा था, सब बच्चे योग कर रहे थे, बाबा भी योग कर रहे थे। और पहले तो सबको यही था 65 में यज्ञ के शुरू में कि मम्मा बाबा तो अंत तक हमारे साथ रहेंगे, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मम्मा शरीर छोड़ के चले गए हैं। बाबा भी कहते थे देखो बाबा कोई खेल दिखा रहा है शायद, सब मम्मा का आवाहन भी करो और योग लगाओ। तो सब योग लगा रहे थे और ऊपर से बाबा ने भी कहा जाओ मम्मा शरीर में जाओ, प्रवेश करके शरीर में आपका रखा है वहां शरीर, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मम्मा आई और उन्होंने थोड़ी देर तक यहाँ पर रहे, और फिर थोड़ी देर के बाद जब मम्मा ऊपर गए तो मम्मा से बाबा ने पूछा मम्मा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें उसका अनुभव करने तो भेजा था कि बाबा जब मैं नीचे गई तो शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, मैंने पुरुषार्थ भी किया, कोशिश भी की कि शरीर में प्रवेश करके कर्मों से अतीत स्थिति का अनुभव करो, कर्मातीत, कर्मों से अतीत यानी देखते हुए भी जैसे न देखने की स्थिति, सुनते हुए भी न सुनने की स्थिति, ये कर्मातीत स्थिति का अनुभव है। तो मैंने कोशिश की लेकिन मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी क्योंकि शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई, चुरपुर नहीं हुई, शरीर तो ठंडा हो गया था एकदम। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची अभी परमधाम तो वापस अपने घर जा नहीं सकते, हाँ सूक्ष्म वतन में जैसे बाबा मामा से बात कर रहे हैं, और वहां पर तो तब जा सकते हैं जब वैसी स्थिति को प्राप्त किया होगा जिस स्थिति में परमधाम छोड़ के हम निकले थे। परमधाम से जब हम छोड़ के शरीर धारण किया, चाहे सतयुग में, पहले जन्म में, चौथे जन्म में, आठवें जन्म में, त्रेता युग में, द्वापर में, जब भी आए यहाँ पर शरीर लिया तो पहली स्थिति वो ही हमारी प्योरेस्ट स्टेज है। उस स्थिति में जब तक वैसी स्थिति प्राप्त यहाँ नहीं की है तब तक अपने घर परमधाम वापस नहीं जा सकते। तो इसीलिए अभी जाओ, पुनर्जन्म मिलेगा नए माता पिता से, फिर पुरुषार्थ करो और उसके बाद जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लोगे फिर सब बाबा के साथ परमधाम जाएंगे। तो देखो ये मामा का उस समय का संदेश था, अभी तक के लिए भी है कि हमें वो स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये स्थिति तभी आएगी अंत समय जो हमें जिस स्थिति में हम परमधाम छोड़ के आए थे उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तब वो हमारी वो स्थिति है जो स्थिति बाबा चाहता है, संकल्पों की स्थिति, और जो स्थिति कर्मातीत अवस्था जो व्यर्थ संकल्प न चले। इसी तरह साथ में जैसे बताया रूलिंग पावर, तो रूलिंग पावर माने ये जो हमारी भी स्थूल कर्मेंद्रियां ये पांच ये हैं, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार, इन पर जब हमारा कंप्लीट कंट्रोल होगा, जब ये व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, और व्यर्थ संकल्प हटाना मुश्किल बात नहीं है, हम बस ये सोचते हैं अरे व्यर्थ चल रहा है, क्यों चल रहा है, इतने साल हो गए अब तो नहीं चलना चाहिए ये व्यर्थ संकल्प, नहीं है। व्यर्थ जो है जो समर्थ स्थिति है वो हमारे अंदर की ही अपनी स्थिति है। वो स्थिति के लिए भाई एक शिल्पकार था, वो पत्थर से मूर्तियां बनाता था, तो किसी ने कहा पूछा आप बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, इतनी बढ़िया कैसे बना लेते हो? तो कहते हैं कि नहीं मैं मूर्ति तो नहीं बनाता, पत्थर जो होता है लेता हूँ और उसके चारों तरफ जो भी व्यर्थ है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, उसे मैं निकाल देता हूँ तो मूर्ति अपने आप ही अंदर से प्रकट हो जाती है। बस वही स्थिति हम बच्चों की भी है कि हमारे अंदर हमारी संपूर्णता की स्थिति है, संपूर्ण है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना संपूर्ण स्थिति को सूक्ष्म वतन में देखते थे, तो ब्रह्मा बाबा का तो डिक्लेयर था, बाबा मम्मा का वो हमारे लक्ष्य थे। और हम लोगों की संपूर्ण स्थिति हमारे अंदर ही है, और जैसे जैसे व्यर्थ हटता जाएगा सामने से मनसा वाचा कर्मणा से, तो अंदर की संपूर्ण स्थिति ये प्रकट होती जाएगी। तो ये है रूलिंग पावर, एक एक कर्मेंद्रिया। और ये इनका संबंध किनसे है, भारतीय संस्कृति भी कहती है कि ये जो पांचों उंगलियां है ना, ये पांच तत्वों को प्रदर्शित करती हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो ये पांच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि अपने इन तत्वों के ऊपर भी हमारी विजय होती रहे। ये तत्वों को हम ऐसा करें, इन तत्वों से बना शरीर है तो एक तरफ तो हम मन जीते जगत जीत बन रहे हैं, एक तरफ प्रकृति जीते जगत जीत बन रहे हैं। मन के लिए तो हम रोज योग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला सब कर रहे हैं, ऐसे ही प्रतिदिन प्रकृति को भी हम, पांच तत्वों को भी हम कुछ ना कुछ मिनट योग का दान अवश्य करें। क्यों, ये प्रकृति से बना हमारा शरीर है। मुझे याद आता है दादी जानकी की तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई, विदेश से बाबा से मिलने के लिए आई, अहमदाबाद में थे लोटस में, और बहुत तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता, जिसको बुलाना हो बुला लो, अब किसी भी क्षण कुछ हो सकता है। तो 31 दिसंबर की बात है, 1999 की, नया मिलेनियम शुरू हो रहा था, 2000 का वर्ष शुरू होने वाला था। तो जब ऐसी स्थिति थी तो यहाँ पर निर्वैर भाई और बड़ी दादी ने, बाबा ने जब मुरली चला ली 31 दिसंबर की, उसके बाद ये गए और इन्होंने बताया, बाबा दादी की तो तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने देखा, बच्ची वो प्रकृति जीत आत्मा है, उसे कुछ नहीं होगा, अभी तो उसे बहुत सेवा करनी है। बस बाबा ने इतना कहा, और उधर चूंकि वो प्रकृति जीत आत्मा थी, उधर उनकी तबीयत ठीक होने लगी, और एक दिन के बाद ही वो तो यहाँ पर आ गए। और उसके बाद आपको मालूम है कि 2020 तक भी, 19-20 तक भी वो सेवा की, 20 वर्ष बाद तक भी वो विश्व की सेवा करते रहे। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो ये इनकी बात, दादी की ही बात सुन के खुश नहीं होना है, हम सबको भी मन जीते जगत जीत भी बनना है, और प्रकृति जीते जगत जीत भी। ब्रह्मा बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा ना, 18 जनवरी को मैंने खुद देखा, मैं यहाँ पर ही था, और बाबा मुरली चला के गए, और बाबा ने दादी के हाथ में हाथ दे के शरीर छोड़ा। और उसके बाद बाबा का शरीर लगभग 65 घंटे तक रखा रहा, ना उस समय कोई इंजेक्शन दिया गया, ना कोई केमिकल लोशन लगाया गया। 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, और 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न शरीर में कोई कालापन आया, न कोई दुर्गंध आई। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो हम सबको भी प्रकृति जीत भी बनना है, और मन जीते जगत जीत भी बनना है, तभी हम ये दोनों, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, इन दोनों का जितना अभ्यास करते रहेंगे, वो अभ्यास ही हमें संपूर्णता की तरफ ले जाएगा। और बाबा ने भी, और ये कब होगा, जब हम अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, ये भी बहुत बड़ा इतिहास है, मैं अभी समय हो गया नहीं बता सकता, लेकिन इतना हम बता दें कि ब्रह्मा बाबा को भी जैसे एक दो दिन पहले आभास हो गया था, बस अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, और उसके लक्षण प्रकट होते थे बाबा के सम्मुख। मैं यहाँ 17 जनवरी को पहुंच गया था, आसाम में पोस्टेड था इंजीनियरिंग पास करने के बाद, और बाबा ने अंतिम समय अपने पास बुला लिया, और बाबा की कर्मातीत अवस्था कैसे प्रकट होती थी, हमेशा तो जब बाबा से मिलते थे बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या हालचाल है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है। उन दिनों 17 और 18 जनवरी को जब बाबा के सम्मुख जाते थे ना, तो बस बाबा दृष्टि दे करके और कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी मन में क्या संकल्प लेकर हम गए हैं वो एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं होती थी, ये है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था और प्योरेस्ट स्टेज का अनुभव, जिस अवस्था में हमने परम धाम को छोड़ा था, अपनी सीट को छोड़ा था, वो ही अवस्था प्राप्त करने का ये अनुभव है, जब हम भी दूसरे की मन की अवस्था को बिना उसके वर्णन किए जान जाएंगे, और ये तब होगा जब हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति कुछ भी नहीं होगा, और जब कुछ नहीं होगा हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके फिर हम सब बाबा के साथ चलेंगे, इन दोनों शक्तियों को प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके, और अपनी इच्छा से शरीर भी छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से आत्मा अंतमति सोगति को भी प्राप्त करेगी, और अपनी इच्छा से जब हम यहाँ से जाएंगे, परम धाम जाएंगे और बाबा के साथ जाएंगे, जो बाबा ने कहा है सब बच्चों को मेरे साथ जाना है, हम सब इकट्ठे जाएंगे और फिर नई दुनिया में भी इकट्ठे आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।